आज हम एक नए अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, इसका अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निम्न रूप से सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार या उद्देश्य, सामाजिक नियंत्रण के दुष्प्रक्रियात्मक परिणाम, सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि या युक्ति, सामाजिक नियंत्रण की अभिकर्ता या साधन, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से सामान्य तौर पर सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा रहता है। मकीवर एवं पेज ने इस संबंध में लिखा है कि अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल लिटरेचर बाय व्हाट एवर नेम ट्रेड्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इसकी प्रमुखता का कारण यह है कि सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाओं के द्वारा समाज संतुलित ढंग से संचालित होता रहता है। जैसे नियम कानून के अभाव में कोई राज व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता है, उसी प्रकार समाज में नियम कानून के अभाव में नहीं चल सकता है। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज की अव्यवस्थाओं से बचाना एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। जिस प्रकार राज्य अपने नियमों के उल्लंघन करने वालों को दंड देता है, समाज भी सामाजिक नियम कानूनों को तोड़ने वाले को दंड देता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहार में निश्चितता तथा एकरूपता आ रहती है। नियंत्रण के स्तर पर समाज और राज्य के बीच यही फर्क है कि राज्य लिखित नियमों से चलता है और समाज अलिखित नियमों से संचालित होता है। राज्य के नियम यदि योजनाबद्ध तरीके से निर्मित होते हैं तो समाज के नियम एवं आदर्श समय के साथ स्वतः विकसित होते रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण की स्वतंत्र रूप से चर्चा इस शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अमेरिकन समाजशास्त्री रॉस ने की थी। तब से समाजशास्त्र में यह एक प्रमुख विषय के रूप में चर्चित होता रहा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में यह अवधारणा अवश्य नवीन है, पर सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी की समाज। लेकिन सामाजिक नियंत्रण के साधनों में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समाज के इतिहास में ऐसा भी वक्त था जब इसका संचालन राज्य, कानून, शिक्षा संस्थान जैसे साधनों के माध्यम से नहीं हो रहा था, लेकिन आज वे सभी सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हो गए हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज विशेष तौर पर अनौपचारिक नियमों से चल रहा था, तो आधुनिक समाज औपचारिक नियमों से संचालित हो रहा है। पहले धर्म की महत्ता बहुत ज़्यादा थी, आज धर्म की महत्ता काफ़ी कम हो गई है। समय के साथ सामाजिक नियंत्रण के माध्यमों एवं उसके स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे नए नए किस्म के नियंत्रण के साधनों का प्रभाव व्यक्तियों पर बढ़ता जा रहा है। यह बदलते समय की आवश्यकता है। यदि समाज अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण खो देता तो समाज कब का समाप्त हो गया होता। मानव समाज वर्तमान स्थिति में जो मौजूद है, इसमें यदि सबसे प्रबल भूमिका किसी सामाजिक प्रक्रिया की रही है तो वह है सामाजिक नियंत्रण। इस ओर हमारा ध्यान हॉब्स, टॉनिस, पोरेटो, डार्कहाइम, पार्सन्स एवं मार्टिन जैसे विभिन्न विद्वानों ने आकृष्ट किया है। कुछ लोगों ने समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण को एक दूसरे का पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा करना गलत है, इसलिए कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया का नाम है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी हुई है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है, इसकी जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा ही होती है। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण नहीं है, पर समाजीकरण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अवश्य होता है। जिन माध्यमों के द्वारा समाजीकरण होता है, बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है। इसलिए कभी कभी समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक सी लगती है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप समाजीकरण होगा, समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जेएच फिक्टर ने सामाजिक नियंत्रण को समाजीकरण की प्रक्रिया का एक विस्तार कहा है। सोशल कंट्रोल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस। जहाँ तक सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वानों के बीच कोई विशेष मतभेद नहीं है। सभी समाजशास्त्रियों ने इसे लगभग एक ही ढंग से परिभाषित किया है। उदाहरण स्वरूप, हॉर्टन एवं हंट ने सामाजिक नियंत्रण को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल कंट्रोल टू डिस्क्राइब ऑल द मीन्स एंड प्रोसेसेस वेयर बाई अ ग्रुप और अ सोसाइटी सिक्योर इट्स मेंबर्स कन्फर्मिटी टू इट्स एक्सपेक्टेशन। इस परिभाषा से यही स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों में अनुरूपता लाई जाती है। जीडी मिचेल ने अपने अ न्यू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में यही विचार प्रकट किया है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता का अनुसरण है। अनुरक्षण का कार्य दो माध्यमों से होता है, समाजीकरण एवं बाह्य दबाव। समाजीकरण के संबंध में फिर से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। यहाँ सिर्फ यही बात दोहराई जा रही है कि समाजीकरण के द्वारा समाज के सदस्य यह सीखते हैं कि व्यक्ति के हित में कौन सा आचरण अपेक्षित है, हमें किस परिस्थिति में कौन सा आचरण करना चाहिए या कौन सा नहीं। इसकी जानकारी समाजीकरण के द्वारा ही होती है। सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों की जानकारी व्यक्ति को समाजीकरण के द्वारा ही होती है। व्यक्तियों के व्यवहार में अनुरूपता सिर्फ इस बात से नहीं आती है कि समाज ने उसे वैसा ही व्यवहार करने को सिखाया है, बल्कि हम बाहरी दबाव के डर से भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं, समाज उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करता है, लेकिन जब हमारा व्यवहार समाज के नियमों के अनुरूप नहीं होता है तो समाज हमें दंडित करने में भी देर नहीं करता। हिंदू समाज की यह अपेक्षा है कि इस धर्म को मानने वाले लोग अपने ही जाति के अंदर विवाह करें, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण किसी दलित कन्या से विवाह करता है तो उसे जाति से निष्कासित किया जाता है। इसी डर से लोग समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार करता है तो राज्य उसे दंडित भी करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परंपरागत समाज में सामाजिक अनुरूपता अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा संभव होता है। लोग नैतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों एवं विभिन्न किस्म के परंपराओं के अनुरूप आचरण करने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के व्यवहार का निर्धारण मौखिक नियम कानूनों से होता है, लेकिन आधुनिक समाज में लोगों को परंपरागत मूल्यों, प्रतिमानों एवं धार्मिक मूल्यों में विश्वास कम होता है, अतः सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्तियों के व्यवहार का नियंत्रण राज्य के नियमों से ज़्यादा और सामाजिक नियमों से कम होता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक जटिल समाज के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन औपचारिक नियम कानून होते हैं जो लिखित होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वे लिखित नियम कानून सामाजिक परंपरा से दूर होते हैं। सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं को ध्यान में रखकर ही औपचारिक नियमों का निर्माण होता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, काइंड्स ऑफ सोशल कंट्रोल। चूंकि सामाजिक नियंत्रण का एक से अधिक माध्यम है और उन माध्यमों का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है, कभी कभी समय के अनुसार उसकी तीव्रता में भी एक ही समाज में भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज में काफ़ी अशिक्षा थी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास बहुत कम हुआ था, इसलिए लोगों का व्यवहार सामाजिक मान्यताओं से कुछ ज़्यादा ही नियंत्रित हो रहा था। आधुनिक समाज में धर्म का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। राज्य एवं कानून के द्वारा व्यक्तियों का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही नियंत्रित होने लगा है। चूँकि आधुनिक समय में समाज विकास के विभिन्न स्तर पर ही है, इसलिए सामाजिक नियंत्रण के स्तर पर विभिन्न समाजों के बीच काफ़ी भिन्नताएँ हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जेज फिक्टर ने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को तीन भागों में बांटा है। पहला, सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, पॉजिटिव एंड निगेटिव सोशल कंट्रोल। जो सामाजिक नियंत्रण अनुनय, सलाह, शिक्षा एवं पुरस्कार के द्वारा संपन्न होता है उसे सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। परिवार, दोस्तों का समूह एवं शिक्षा संस्थानों द्वारा जो आचरण का नियंत्रण होता है वह इसी श्रेणी का सामाजिक नियंत्रण माना जाता है। व्यक्ति को पुरस्कार व प्रोत्साहन देकर सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे अनुशासित छात्र को महाविद्यालय की ओर से पुरस्कार या प्रोत्साहन देना। पार्सन्स के अनुसार माँ के द्वारा बच्चे को एक चुंबन देना ही काफ़ी बड़ा पुरस्कार है। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण के लिए आदेश और दंड का प्रावधान रहता है, जिसके भय से वे सामान्य व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। फांसी, कैद, जुर्माना, समाज द्वारा निंदा या उपहास इत्यादि नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में सहायक हैं। दूसरा, औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था होती है, जैसे अपहरणकर्ता पर मुकदमा चलाकर न्यायालय द्वारा दंड दिया जाना इत्यादि। राज्य पुलिस, न्यायालय आदि किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है। अनौपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका विकास कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है एवं उसकी अवहेलना करने वाले को समाज निंदा या बहिष्कार करता है। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। यह औपचारिक नियंत्रण की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम इत्यादि अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। तीसरा, सामूहिक एवं संस्थागत नियंत्रण, ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशनल सोशल कंट्रोल। जेज फिक्टर ने बताया है कि समाज बहुत किस्म के समूहों के मिलने से निर्मित होता है और उन समूहों के द्वारा व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। व्यक्ति के जीवन पर समूह का प्रभाव इसलिए होता है कि वह किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में विभिन्न किस्म के समूहों की चर्चा उन्होंने की है, जैसे परिवार, आर्थिक एवं राजनीतिक समूह, मनोरंजन एवं धार्मिक समूह एवं विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी समूह। उन्होंने यह भी कहा है कि द्वितीयक समूह की तुलना में प्राथमिक समूह के द्वारा सामाजिक नियंत्रण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विभिन्न प्रकार के समूहों की तुलना में परिवार जैसे प्राथमिक समूह की महत्ता नियंत्रण के साधन के रूप में सबसे अधिक है। व्यक्तियों के व्यवहार का निर्धारण मात्र समूह जैसे मूर्त व्यवस्था से ही नहीं होती, बल्कि अमूर्त संस्थाओं की भूमिका भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। धार्मिक विश्वास, प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक मूल्यों एवं अन्य प्रकार के सांस्कृतिक यथार्थों के द्वारा व्यक्तियों का व्यवहार निर्धारित एवं संचालित होता है। सामाजिक समूह भी व्यक्तियों को इन्हीं अमूर्त नियमों एवं प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। इसी के आधार पर समाज यह तय करता है कि कोई व्यवहार विसामान्य या आदर्श व्यवहार है। सामाजिक संस्थाओं के अलावा व्यक्ति का व्यवहार राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के द्वारा भी निर्धारित होता है। राज्य या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा यदि समाज के लोगों का आचरण निर्धारित होता है तो उसे राजनीतिक संस्थागत नियंत्रण कहा जाएगा। उपर्युक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के अन्य प्रकारों की भी चर्चा की है, जिसे सामाजिक नियंत्रण के चतुर्थ प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। चौथा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। कार्ल मैनहाइम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा अपने पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में विस्तार से किया है। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्रायः प्राथमिक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी इत्यादि। इस नियंत्रण का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अधिक गहराई से पड़ता है, क्योंकि ये लोग व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण से है। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा लगाए गए बंधन अप्रत्यक्ष नियंत्रण हैं। नियंत्रण का यह स्वरूप अत्यधिक सूक्ष्म व छोटे छोटे व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी बड़े व्यक्ति को सामने देखकर खड़ा हो जाना इत्यादि, यह नियंत्रण कालांतर में हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। अन्य समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की चर्चा की है, पर उसे देखने से कोई नई बातें सामने नहीं आती हैं। जिन तथ्यों की चर्चा ऊपर की गई है उन्हीं के नए नामों के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, इसलिए यहाँ सामाजिक नियंत्रण के अन्य प्रकारों पर विशेष विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। टीबी बॉटमोर ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों जैसे शिक्षा, धर्म, प्रथा, कानून, नैतिकता इत्यादि को ही सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के रूप में रखने का प्रयास किया है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार या उद्देश्य, फंक्शंस और एम्स ऑफ सोशल कंट्रोल। पहला, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में सापेक्षिक स्थिरता प्रदान करना। कोई भी समाज पूर्णतः स्थिर नहीं होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फिर भी समाज के कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जिनमें स्थिरता पाई जाती है। प्रत्येक समाज अपने प्रतिमानों को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस करता है। भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन होने के बावजूद आज भी बहुत सारे सामाजिक तत्व मौजूद हैं, जैसे जाति व्यवस्था, विवाह संबंधी नियम कानून इत्यादि, जो सामाजिक नियंत्रण द्वारा संभव होते हैं। परंपरा से चली आ रही समूह की संस्कृति के रख रखाव और संरक्षण के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। व्यक्तियों को समाज में प्रचलित मान्यताओं और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मजबूर या प्रेरित करके इन सांस्कृतिक विशेषताओं की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। परंपराएं हमारे पूर्वजों की देन हैं, इन्हें निरंतरता प्रदान करना प्रत्येक समाज का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। सामाजिक नियंत्रण इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जब कोई व्यक्ति परंपराओं की अवहेलना करता है तब सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। दूसरा, लोगों का मनोबल ऊंचा बनाए रखना। समाज के सदस्य जब यह महसूस करते हैं कि समाज उनके हितों की सुरक्षा करने में समर्थ है तो सदस्यगण अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में वे तनाव मुक्त रहते हैं और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। यह सुरक्षा की भावना सामाजिक नियंत्रण द्वारा ही संभव है। तीसरा, सदस्यों में संवेगात्मक एवं सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा। समाज में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सदस्यों में आम सहमति एवं आपसी सहयोग की भावना की आवश्यकता होती है। कौन सा व्यवहार उचित या अनुचित है, व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है या समाज व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आम सहमति या आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इससे पारस्परिक सहयोग और सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। इसके लिए आवश्यक अनुशासन सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। यह सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मकीवर एवं पेज ने भी स्वीकार किया है कि सामाजिक नियंत्रण से समाज में व्यवस्था और एकता कायम होती है। समाज अनेक छोटे बड़े समूहों के मिलने से बनता है। सामाजिक एकता और अस्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इन विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे के साथ तथा पूरे समाज के साथ संतुलन बनाए रखना होता है, और यह संतुलन सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही स्थापित हो पाता है। चौथा, समाज विरोधी व्यवहारों का दमन करना। समाज में अनेक व्यवहार असामाजिक या समाज विरोधी होते हैं। उसके लिए राज्य में दंड की व्यवस्था होती है। कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है, जिसके अंतर्गत असामाजिक व्यवहार करने वाले को दंड दिया जाता है। इसके दो लाभ होते हैं। पहला यह कि ऐसे अपराधी दोबारा अपराध करने की हिम्मत न करें, तथा दूसरा यह कि अन्य लोग यह महसूस करें कि असामाजिक व्यवहार के कारण वे दंड के भागी बन सकते हैं। पांचवा, व्यक्तिक संबंधों को व्यवस्थित करना। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, परंतु प्रत्येक सामाजिक संबंध के कुछ नियम और अपेक्षाएं हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण में इन पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जो सामाजिक नियंत्रण के विधियों द्वारा पूरा किया जाता है। छठा, धन जन की सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण के लिए प्रत्येक समाज के पास अपना कुछ नियम एवं कानून होता है। सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए कानून बनाए जाते हैं और सरकार विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा लोगों की संपत्ति एवं जीवन को सुरक्षा करती है। समाज में कुव्यवस्था और अविश्वास को फैलाने से रोकने के लिए सामाजिक नियंत्रण के साधन कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। सातवां, एकरूपता स्थापित करना। सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज में समानरूपता लाना होता है। व्यवहार में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज में निर्धारित मानदंडों से भिन्न व्यवहार के नुकसानदेह परिणामों से समाज की रक्षा करना होता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यवहार में एकरूपता से यह मतलब नहीं है कि समाज के तमाम लोग एक ही जैसा व्यवहार करें। इसका मतलब यह है कि समाज में विभिन्न लोगों के द्वारा की जाने वाली व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हों एवं उनकी गतिविधियों में आवश्यक तालमेल भी हो। उदाहरण स्वरूप, प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों के लिए एक समान नियम पहले से ही निर्धारित होते हैं। अगर विभिन्न दल द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया गया तो कोई खेल नहीं खेला जा सकता। उसी प्रकार सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी व्यवहारों की एकरूपता की न केवल उम्मीद ही की जाती है, बल्कि यह आवश्यक भी समझी जाती है। आठवां, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। सामाजिक नियंत्रण का उपयोग कभी कभी अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। भारत में बाल विवाह, छुआछूत तथा दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जैसे सामाजिक नियंत्रण के साधनों का इस्तेमाल किया गया। कानून के द्वारा मात्र व्यवहारों या आचरणों पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि परिवर्तन भी संभव है। इस देश में कानून के माध्यम से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को उठाने के बहुत सारे सार्थक प्रयास किए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण के दुष्प्रकार्यात्मक परिणाम, डिसफंक्शनल कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल कंट्रोल। पहला, शोषण। सामाजिक नियंत्रण कभी कभी शोषण का प्रखर साधन भी बन जाता है। प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति या समूह अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये स्वार्थ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधनों का इस्तेमाल कर कोई सत्तारूढ़ दल अपने शासन या प्रभुत्व को अस्थायी बनाने का प्रयास कर सकता है। ब्राह्मण जाति के लोग शायद ही यह कभी पसंद नहीं करते हों कि जाति व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन हो, क्योंकि उसकी निरंतरता में ही उनका स्वार्थ निहित है। दूसरा, सुधार और परिवर्तन में बाधा। सामाजिक नियंत्रण परिणामों को सीमित करता है एवं कभी कभी रचनात्मक कार्यों पर रोक लगाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा रचनात्मक सुधारों और सामाजिक परिवर्तनों में बाधा होती है। प्रारंभ में अंबेडकर एवं गांधी जी के अछूतों द्वार आंदोलन का लोगों ने विरोध किया। उसी प्रकार पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लोग यह कभी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान मिले। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दबाव। सामाजिक नियंत्रण के साधन कुछ व्यक्तियों पर भारी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालते हैं। जैसे सख्त शासन और दमनकारी माहौल कभी कभी समाज के सदस्यों में तनाव और मानसिक बीमारी उत्पन्न कर देता है। दलितों को इतने लंबे समय तक पिछड़े रहने का प्रमुख कारण यह रहा है कि भारतीय संस्कृति का उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना अधिक था कि वे शोषण का विरोध करने की हिम्मत ठीक से नहीं जुटा पाए। लोग भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर जीवन व्यतीत करते रहे। इसी तरह जिस परिवार में कड़ा अनुशासन लागू होता है, वहाँ बच्चों को व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। इस तरह व्यक्ति को सामाजिक नियंत्रण के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से अनेक किस्म का नुकसान उठाना पड़ता है। चौथा, सामाजिक तनाव। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा आधुनिक समाज में तनाव भी उत्पन्न होता है। विभिन्न समूहों के बीच विशिष्ट हितों, मान्यताओं और मूल्यों को लेकर एक दूसरे के साथ टकराव हो सकता है। जब कोई एक या अधिक समूह अपनी मान्यताएं दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है, तो समाज में टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि या युक्ति, मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। टैलकॉट पार्सन्स ने मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि की चर्चा की है। इसकी चर्चा उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के प्रतिमानों को बनाए रखने के संदर्भ में की है। पार्सन्स प्रकार्यवादी सैद्धांतिक परंपरा के समाजशास्त्री हैं। इस विचारधारा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के प्रत्येक इकाई समाज को किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए और इसी से सामाजिक व्यवस्था अपने प्रतिमानों को बनाए रखती है। पार्सन्स ने आगे कहा है कि यदि कोई व्यवहार सामाजिक मूल्य से विचलित होता है, तो इससे समाज का प्रतिमान खतरे में पड़ सकता है। अतः वैसे व्यवहारों को प्रस्फुटित होने से पहले ही दबा देना चाहिए। पार्सन्स के अनुसार विचलनकारी व्यवहारों के पीछे अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं और उनमें सबसे प्रमुख कारक भूमिका द्वंद्व यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट है। हम अधिकतर व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ही करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जब हमारा व्यवहार सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो पाता है। पार्सन्स ने भूमिका संघर्ष के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि समाज में एक ही व्यक्ति से कभी कभी एक ही समय में दो भिन्न भूमिकाओं की आशा की जाती है। ऐसी स्थिति में वह यह निर्णय नहीं कर पाता है कि दो विरोधी भूमिकाओं में से किस भूमिका को वह पहले अदा करे। उदाहरण स्वरूप, एक पुलिस ऑफिसर से कभी कभी दो भिन्न भूमिकाओं की अपेक्षा की जा सकती है, जैसे अपराधी को पकड़कर अदालत तक पहुंचाना एवं नेताओं की पैरवी पर उसे नहीं पकड़ना या पकड़े जाने पर मुक्त कर देना। ये दो विरोधी भूमिकाएं हैं जिनका निर्वाह करते समय एक पुलिस ऑफिसर अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है। उसी प्रकार कभी कभी एक डॉक्टर के सामने भी दो विरोधी भूमिकाओं को निभाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे जब डॉक्टर अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो और उस समय कोई व्यक्ति गंभीर रोग की अवस्था में पहुंचता है, तो डॉक्टर के सामने अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में डॉक्टर आगे उस रोगी को पहले देखता है तो वह अपने परिवार के प्रति अपेक्षित भूमिका से विचलित होता है, या फिर डॉक्टर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वह रोगी के प्रति अपने अपेक्षित भूमिका से विचलित हो जाता है। इसी अनिश्चितता की स्थिति को ही समाजशास्त्रीय भाषा में भूमिका द्वंद यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। पार्सन्स ने भूमिका द्वंद की स्थिति से निपटने के लिए दो उपाय सुझाए हैं। पहला, अपने कार्यकलाप को समयानुसार बांट देना, एवं दूसरा, विषय वस्तु की प्रमुखता के अनुसार एक कार्य के को अन्य की तुलना में अधिक महत्व देना। कार्यों के इस वितरण व्यवस्था को यदि हम संस्थागत रूप दे सकें तो भूमिका संघर्ष की स्थिति कम से कम होगी, जिससे विचलनकारी प्रवृत्ति में भी कमी होगी। ऐसी स्थिति में किसी एक समय में हम एक ही भूमिका का निर्वहन करेंगे। कार्य के इस वितरण व्यवस्था के बाद भी भूमिका द्वंद की संभावना उत्पन्न हो सकती है, जैसे यदि डॉक्टर अपने परिवार के साथ मनोरंजन कर रहा हो और उस स्थिति में कोई रोगी गंभीर अवस्था में आता है, तो डॉक्टर के सामने यह समस्या हो जाती है कि वह रोगी को देखे या परिवार के साथ मनोरंजन करे। पार्सन्स ने कहा है कि डॉक्टर को कार्य के महत्व और मानवीय मूल्यों के आलोक में रोगी को ही पहले देखना चाहिए। इससे भी भूमिका द्वंद की स्थिति को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी समाज में स्थिरता और उसकी सुव्यवस्था को बनाए रखती है। पार्सन्स ने इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में सामाजिक नियंत्रण की तीन क्रियाविधियों की चर्चा की है। पहला स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव, दूसरा निषेधात्मक यानी निगेटिव, एवं तीसरा चिकित्सात्मक थेरेपेटिक। पहला स्वीकारात्मक क्रियाविधि पॉजिटिव मैकेनिज्म। सामाजिक नियंत्रण की बहुत सारी प्रक्रियाएं स्वतः संचालित होती रहती हैं। हम जीवन की बहुत सारी चीज़ों को समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे जो घर में या स्कूल में सीखते हैं वह उनके जीवन का एक स्वाभाविक तौर तरीका बन जाता है। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप हम स्वतः करते रहते हैं। इसके लिए हमें किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी क्रियाविधि स्वीकारात्मक क्रियाविधि कहलाती है। दूसरा निषेधात्मक क्रियाविधि निगेटिव मैकेनिज्म। समाज में बहुत सारे ऐसे भी व्यवहार होते हैं जिसे हम किसी बाह्य दबाव के अंतर्गत करते हैं। बहुत से लोग चोरी या घुसखोरी करना चाहते हैं पर वे इसलिए ऐसा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कानून का भय होता है। जब हम किसी बाहरी शक्ति के डर से कोई विसामान्य व्यवहार नहीं करते हैं तो यह निषेधात्मक क्रियाविधि की श्रेणी में आता है। तीसरा चिकित्सात्मक या सुधारात्मक क्रियाविधि थेरेपेटिक मैकेनिज्म। अपराधियों को दंड इसलिए दिया जाता है कि वे भविष्य में गलत हरकत दोबारा न करें। अपराधी किस्म के नाबालिग बच्चों को सुधारने के लिए उसे कभी कभी सुधारालय यानी रिमांड होम में भी रखा जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए पुनः समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न समाजों में व्यक्तियों के व्यवहारों को सामाजिक नियम कानूनों के अनुरूप करने के लिए अलग अलग साधन हैं। पार्सन्स ने चिकित्सात्मक क्रियाविधि के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। पहला विसामान्य व्यक्ति के संवेगात्मक समर्थन इमोशनल सपोर्ट प्रदान कर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक निविष्टन यानी समर्थन साइकोडायनेमिक इनपुट मिलने से व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग समझता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार में अनुरूपता आने लगती है। दूसरा किसी भी विसामान्य व्यक्ति के को अचानक सुधारा नहीं जा सकता है। इसके लिए उसे धीरे धीरे उसके व्यवहार में सुधार लाया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति छोटे छोटे विसामान्य व्यवहार करता रहता है जिसे समाज को सहन करना पड़ता है। आचरण को सुधारने के लिए कभी कभी समाज के द्वारा विसामान्यता को छूट भी दे दी जाती है ताकि उसके मन में जो कुछ भी दमित भाव है वह निकल जाए। जैसे होली के अवसर पर नवयुवकों को गलत आचरण करने के लिए हिंदू समाज में काफ़ी छूट है, उसी प्रकार मेले में भी कुछ गलत हरकत करने पर पुलिसकर्मी बहुत सख्ती से पेश नहीं आते हैं। इस प्रकार के आचरण को सुरक्षा कपाट क्रियाविधि यानी सेफ्टी वॉल्व मैकेनिज्म कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में यौन संबंधी व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए नाइट क्लब नृत्यशाला यानी कैसिनो आदि संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा वे सामान्य व्यवहार नियंत्रित ढंग से बाहर निकल आते हैं। तीसरा कभी कभी समाज को गलत हरकतों या आदतों से बचाने के लिए विसामान्य व्यवहार करने वालों को समाज से दूर रखा जाता है। जैसे सरकार की यह कोशिश होती है कि शराब की दुकानों जुआ खानों एवं वैश्यालयों को शहर के ऐसी जगह पर नहीं चलने दिया जाए जिससे समाज के अच्छे लोगों को गलत आदत का शिकार होना पड़े। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में नृत्यशाला यानी कैसिनो जैसी व्यवस्था को शहर के मुख्य क्षेत्र या कम से कम आवासीय क्षेत्र से दूर अपना धंधा चलाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के पृथक्करण की क्रियाविधि कभी कभी आम जीवन में भी अपनाने की कोशिश होती है। जैसे जब कुछ विद्यार्थी परीक्षा में मात्र चोरी के बल पर ही सफल होने का प्रयास करते हैं तो वैसे विद्यार्थियों से तंग आकर प्राचार्य कभी कभी अलग परीक्षा स्थल की भी व्यवस्था करते हैं ताकि इसका कुप्रभाव महाविद्यालय के अन्य परीक्षार्थियों पर नहीं पड़े। इसे समाजशास्त्रीय भाषा में पृथक्करण की क्रियाविधि यानी इंसुलेशन मैकेनिज्म कहा जाता है। चौथा, सामाजिक नियंत्रण की एक और क्रियाविधि अस्थायी छूट यानी टेम्पररी रिलैक्सेशन है। जब कहीं कोई आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, अग्निकांड या रेल दुर्घटना इत्यादि, तो वैसी परिस्थिति में कुछ लोग उस समय गलत काम कर बैठते हैं। समाज उस ढंग की छिटपुट घटनाओं पर बहुत गौर नहीं करता है। यदि कहीं भयानक बाढ़ या भूकंप आता है तो कुछ लोग वैसे मौके पर चोरी कर बैठते हैं। वैसी स्थिति में प्रशासन की ओर से कोई विशेष कार्यवाही नहीं होती है। बाढ़ से प्रभावित सामाजिक जगहों पर मलमूत्र भी त्याग करते हैं। यदि इस प्रकार की हरकतों को थोड़ी छूट न दी जाए तो संभव है समाज में अशांति एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज में कुछ ऐसे भी हरकतें होती रहती हैं जिसे कुछ लोग वर्जित करने के बावजूद बार बार दोहराते हैं। जब समाज में ऐसी स्थितियों से उब जाता है तो लाचार होकर वे सामान्य व्यवहार के छूट देता है। इसे सीमा विस्तार क्रियाविधि यानी बाउंड्री एक्सटेंशन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। समलैंगिक व्यवहार यानी होमोसेक्सुअलिटीज और लेस्बियनिज एक प्रतिबंधित किस्म का यौन व्यवहार है। पाश्चात्य देशों में यह इतना अधिक बढ़ गया कि अब दो पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी तक कर बैठते हैं। चर्च की ओर से इस प्रवृत्ति का प्रारंभ में भरपूर विरोध हुआ, लेकिन बहुत सारे पश्चिमी देश में इस विसामान्य व्यवहार पर अब बहुत गौर नहीं किया जा रहा है। पार्सन्स ने कहा है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि सन्निहित रहती है और इनके सहारे विसामान्यता को कम किया जाता है और विचलित व्यक्ति को सुधार कर पुनः सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बनाया जाता है।